ओम शांति। आप सब इंदिरा बेन का परिचय पहले सुने हैं, लेकिन फिर भी इंदिरा दीदी नागपुर से हैं। वो 34 ईयर से ज्ञान में हैं और 23 साल से वो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 12 साल से वो मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। पहले 5 साल उसने ज्ञान सरोवर में सेवाएं दी। वहां उसने एक पुस्तक लिखी उसी साल, मनोबल एवं मनसा सेवा। आप सभी भाई बहनों ने जरूर पढ़ी होगी कि हमारा यह परिस्थिति, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे परिस्थिति लौकिक में भी और शरीर में भी, तो ऐसे में हमें अपने मनोबल को कैसे बढ़ाना है, परिस्थितियों का कैसे सामना करना है और आगे बढ़ना है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना। और वैसे फिर सिलू दीदी के साथ आप यहाँ सेवा दे रही हैं, देश विदेश से शिविर, जो भी पट्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है उसमें आप अच्छी रीति सुचारू संचालन करती हैं। और आज उसका विषय है नर से नारायण कैसे बनना। तो वैसे बाबा भी कई बार मुरली में पूछते हैं, आपको लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता? लक्ष्मी नारायण बनना है ना? लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, हाथ खड़े करो। अच्छा, राम सीता किसको बनना है? कोई को नहीं। अच्छा अच्छा, आज भी शिलू दीदी ने पूछा ना कि पूरे 84 जन्म कौन लेंगे, हम बच्चे लेंगे? लक्ष्मी नारायण बनना है तो पूरे 84 जन्म तो लेने पड़ेंगे। तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो आज हमें इसी विषय पर दीदी जी बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण करेंगे कि हमें अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है। और हम सब उसका एक हाथ हिलाकर स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। तो बाबा के मुरली की आज पहली लाइन, मीठे बच्चे बोलो आगे, सत्य सत्य बाबा तुम्हें नर से नारायण बनाने की सत्य कथा सुना रहे हैं। और प्रश्न क्या था आज की मुरली का? पारस बुद्धि कौन बनते हैं? कौन बनते हैं पारस बुद्धि? हाँ, देह के संबंधों को जो सब भूल जाते हैं, बाप को याद करते हैं। सदगुरु की यही श्रीमत है और इसी श्रीमत पर जो चलते हैं, देही अभिमानी बनते हैं और पारस बुद्धि बनते हैं। तो ये नर से नारायण बनने की जो सत्य कथा है, इसमें दो है, एक है नर और एक है नारायण। तो नर और नारायण में अंतर क्या है? एक है नर जिसने नारायण बनना है, नर माना कलयुगी मनुष्य और नारायण माना सतयुगी मनुष्य। और जिस सतयुगी मनुष्य को देवता कहते हैं और कलयुगी मनुष्य को शूद्र कहते हैं। और हम कौन है? हम न तो सतयुग में है अभी और न ही कलयुग में, हम तो संगम पर आ गए। तो हम फिर कौन है? हम हैं ब्राह्मण। तो नर माना कलयुगी मनुष्य मतलब शूद्र, और नारायण माना सतयुगी मनुष्य मतलब देवता, और हम हैं ब्राह्मण। तो जो शूद्र होता है, जो कलयुगी मनुष्य होता है, वो बॉडी कॉन्शियस में जीता है। और जो देवता होता है वो सोल कॉन्शियस में जीता है, और जो ब्राह्मण होता है वो किस में जीता है? हाँ, ब्राह्मण में एक विशेषता और है कि वो बॉडी कॉन्शियस से परे है लेकिन सोल कॉन्शियस प्लस गॉड कॉन्शियस। सत्युग में गॉड कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी हमारे पास, रहेगी क्या? हाँ, बाबा कई बार मीठी शिकायत करते हैं, बच्चे मुझे बुलाते ही नहीं सत्युग में, मुझे याद ही नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि इतना भरपूर कर देता है वो हमें, तो फिर उसकी जरूरत नहीं होती है। जैसे आप देखो कि सूर्य से रोशनी लेके चंद्रमा क्या होता है, धीरे 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 उसका प्रकाश बढ़ता है और पूनम का चांद बनता है। लेकिन जिस दिन पूनम का चांद बनता है उसके बाद उसकी यात्रा कौन सी शुरू होती है? सूर्य से विमुख होने की। जब वो उसकी यात्रा रहती है कि अमावस से पूनम की ओर जाएगा तो सूर्य से क्या हो रहा है, सम्मुख होते जाता है और इसलिए उसका प्रकाश बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। लेकिन एक दिन आता है जब वो संपन्न सोला कला बन जाता है, संपूर्ण चमकने लगता है, उसके अगले दिन से वो सूर्य के क्या होने लगता है, विमुख होने लगता है। तो ऐसे ही हमारा भी है कि जब बाबा हमको सोला कला संपूर्ण बना लेते हैं तो उसके बाद सत्युग में हमारे पास गॉड कॉन्शियस रहती ही नहीं है, सिर्फ सोल कॉन्शियस रहती है। तो फिर ब्राह्मण और देवता में अंतर क्या हो गया कि ब्राह्मण सोल कॉन्शियस में भी है और गॉड कॉन्शियस में भी है, लेकिन देवता सिर्फ सोल कॉन्शियस में है। और इस कारण से ब्राह्मण चढ़ती कला में है और देवता कि भले एक बार वो पूरा पूनम का चांद बन गया, बैटरी फुल चार्ज हो गई है, लेकिन अब उसके नेक्स्ट से क्या हो रहा है, वो धरती कला में। लेकिन फिर भी जैसे बाबा कहते हैं ना कि पूनम का चांद जिस दिन होता है उसके एक दो दिन पहले या उसके एक दो दिन बाद आप अगर उसको देखेंगे तो महसूस नहीं होगा कि पूनम आज है या कल है, पूनम आज है या कल थी, ऐसे इतना जल्दी महसूस में नहीं आता। लेकिन अगर दो तीन चार दिन का फर्क हो तो पता चलता है कि वो दिखता नहीं क्या, थोड़ा खाली खाली है, कहां पूरा राउंड है। तो ऐसे ही हम भी जब सत्युग में होंगे, पूनम की चांद की तरह नीचे उतरेंगे, लेकिन फिर हमारी भी कला क्या होने वाली है, कम होने वाली है जरूर, पर इतनी धीमी गति से कम होगी कि शुरू में पता ही नहीं चलेगा कि कम हुई है। इसीलिए देखो हमारे पास भारत में हिंदू संस्कृति के अंदर देवी देवताओं में भी कैटेगरी कर दी, जैसे अभी पूछा ना लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है, कि एक है सोलह कला वाले और एक है चौदह कला वाले, कि दो तीन दिन के बाद महसूस होता है कि हाँ आज पूनम का चांद नहीं है, पूनम से कम है। तो ऐसे ही सत्युग में हम सोलह कला संपन्न होंगे, लेकिन दो एक युग जब पूरा बीत जाएगा, सत्युग पूरा बीत जाएगा, माना 1250 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद एहसास होगा कि थोड़ी कमी आई है। तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ कम हुआ है, लेकिन बाद में एहसास होगा तब कहा कि 14 कला। लेकिन क्या 16 और 14 के बीच में 15 नहीं आता है क्या? तो 15 कला वाला कहां गया देवता? वो यही कारण है कि पता ही नहीं चलता है ना, और जब पता चलता है तब तक इतना कम हो जाएगा, इसलिए 15 कला वाला कोई देवता हमारे पास है ही नहीं, 14 कला वाला है। और उसके बाद 12-13 वाला है क्या? कोई नहीं। तो गिनती अगर नीचे करें तो अभी 14 के नीचे 13 आता है, 12 आता है, तो क्यों नहीं है उसमें कला? फिर वो इसलिए कि बाबा कहते हैं दो युग हो जाने के बाद क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियस आ गया, देह अभिमान आ गया। तो उसको कला कैसे कहेंगे फिर, कला तो कह ही नहीं सकते ना। जैसे एक दिया जल रहा है, एक छोटा सा दीपक उठाया हाथ में और उसमें तेल डाला और उसके अनुसार बत्ती तैयार की रुई से और उसको तेल में डुबाया और उसको वापस राइट हाइट पे ऊंचाई पे रखा और माचिस की तीली उठाई और उसको प्रज्वलित किया, उसको जलाया, तो क्या होगा, क्या होगा, दिया प्रकाश देना आरंभ करेगा। वो दिया उस समय जो प्रकाश दे रहा है वो कितना प्रकाश है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो उसका 100% प्रकाश दे रहा है, उसकी अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार वो 100% प्रकाश दे रहा है। लेकिन जिस घड़ी चलाया उस घड़ी 100% और उसके अगले ही घड़ी कम, भले वो हम अंतर महसूस नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हुआ तो जरूर कम है। लेकिन उसके बाद कम होते होते एक स्टेज आएगी कि जहां महसूसता होगी कि दिया भल अभी भी प्रकाश ही दे रहा है लेकिन पहले के भेंट में ये प्रकाश अभी कम है। अब दिया और आगे जल रहा है तो ये पहली स्टेज थी जहां वो 100% प्रकाश दे रहा था, दूसरी स्टेज थी जहां उसका प्रकाश कम हुआ है पर देह अभी भी प्रकाश रहा है पर पहले की भेंट में कम है, तीसरी स्टेज क्या आएगी उसकी कि जहां दिए का प्रकाश अब और कम हुआ है लेकिन साथ साथ उसमें थोड़ा सा धुआं निकलना आरंभ हुआ है, प्रकाश के साथ धुआं, ये तीसरी स्टेज जिसको कहा कि बॉडी कॉन्शियस। सत्युग 100% 16 कला संपन्न, फिर आए त्रेता में 14 कला संपन्न की विजिबिलिटी महसूस हुआ कि पहले से कम है पर है अभी भी प्रकाश। तभी कहते हैं बाबा कहते हैं सुख शांति जो सत्युग में होगी वही सुख शांति तुम्हारे पास त्रेता में भी होगी लेकिन परसेंटेज में थोड़ा सा अंतर होगा, दुख अभी वहां पर नहीं होगा पर सुख की जो मात्रा थी जो परसेंटेज था वो परसेंटेज थोड़ा डाउन। लेकिन फिर दिए की तीसरी स्टेज में क्या देखा हमने, धुआं। तो द्वापर में आए तो प्रकाश और कम हुआ लेकिन क्या हुआ, धुआं, मना बॉडी कॉन्शियसनेस में हम आए और इसीलिए कला शब्द बोल ही नहीं सकते, धुएं को कला बोलेंगे क्या, हाँ धुएं को कला थोड़े बोलेंगे, धुआं तो क्या करता है, सफोकेशन करता है ना, तो इसलिए कला शब्द ही निकाल दिया और इसीलिए सिर्फ 16 कला और 14 कला, वरना आज की डेट में बाबा क्या कहते हैं हमको, तुम बच्चे 9 कला वाले बन गए थे, ऐसे ही बोल रहे हैं ना बाबा, तो फिर 9 कला तो 16 फिर 14 फिर इतने बीच में नंबर कहां चले गए, क्यों नहीं उसके लिए हमने कला शब्द का यूज किया, क्योंकि धुआं भी आ गया ना तो उसके लिए हम कैसे कला शब्द का यूज कर सकते, नहीं कर सकते हैं। आज भी देखो कोई रास्ते पे चलता है, चलना एक चलना है, क्रिया है, लेकिन वही चलना अगर एक नट जो होता है नहीं, पहले छोटे बच्चे थे जब वो आते थे नट बांस दो जगह गाड़ के रस्सी पे चलते, तो उसका चलना कलात्मक जिसके कारण लोग जमा हो रहे हैं, चल तो वो भी रहा है ना और क्या कर रहा है, चल ही तो रहा है ना लेकिन कलात्मक है वो और इसलिए उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे ही हम जो कुछ कर रहे थे सत्युग में और त्रेता में हर चीज में क्या था, कला थी, लेकिन द्वापर में आते आते उसमें धुआं आ गया तो अब उसको हम कला नहीं बोल सकते हैं। तो नर से नारायण बनने की कथा को ठीक से समझने से पहले नारायण से नर बनने की कथा समझते हैं, क्योंकि अभी हमको नर से नारायण बनना है। जैसे देखो, आपको कुछ तकलीफ हुई है, उस तकलीफ का, जैसे डॉक्टर के पास गए, मुझे सर्दी खांसी बुखार जो भी हुआ, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर पहले पूछता है क्या खाया था, है ना, क्या पानी पिया था, मतलब जो बीमारी हुई है उसके जड़ कारण का पता लगाया जा रहा है पहले। और वो जड़ कारण पता चल जाए उसके अनुसार क्या करेंगे, दवाई देंगे। वरना कारण का अता पता ही नहीं है और तुक्का लगाते जाओ, दवाइयां देते जाओ और हालत पेशेंट की खराब होती जाती। यही होता है, कई बार ऐसे होता है, नहीं होता है, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ और बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए हमें नर्स से नारायण बनना है। वो हमको बहुत अच्छी से तब समझ में आएगा कि हम नारायण से नर कैसे बन गए, क्योंकि हमको कारण पता चल जाएगा ना कि कहां हमारी गड़बड़ हुई है, उसी गड़बड़ को ठीक कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऊपर से नीचे उतर रहे पहले, ठीक है ना। तो हम थे 16 कला संपन्न, क्योंकि संगम में हमने क्या किया, सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस बनकर, मतलब आत्मा परमात्मा कनेक्ट हुए, योग लगाया और आत्मा रूपी चंद्रमा को पूनम का चांद बनाया, संपन्न संपूर्ण आत्मा बन गई, फरिश्ता सो देवता। लेकिन फिर जैसे ही हमने देह धारण की सतयुग में आके, तो बाबा कहते हैं वहां तुम क्या हो, सतो प्रधान हो, प्रकृति भी सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है। संगम में क्या है कि हम आत्मा सतो प्रधान बन रही है, लेकिन देह तो तमो प्रधान है अभी भी, है ना, लेकिन सतयुग में क्या होगा, देह भी हमारी सतो प्रधान होगी। और इसलिए आज की डेट में जो हमको प्रॉब्लम्स है शारीरिक, वो कुछ भी वहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर भी क्या होगा, देह भी क्या होगी, सतो प्रधान होगी, जिसको कहा कंचन काया होती है। नर और नारायण में अंतर और क्या है कि नर माना पांचों प्रकार के सुखों से वंचित और नारायण माना पांचों प्रकार के सुखों से भरपूर। कौन से पांच प्रकार के सुख बोलो, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, प्रकृति का सुख। तन का सुख माना उसके अंदर तीन बातें, तन के सुख के अंदर तीन बातें, इस तन की तंदुरुस्ती, इस तन की सुंदरता, सुंदरता माना ब्यूटी पार्लर वाली नहीं, हाँ, हम अपने हिसाब से मेरे को क्या फिट होगा, क्या जचेगा, बाल बनाना, कपड़े धुले हुए ठीक से पहनना व्यवस्थित, ये भी तो सुंदरता ही में आएगा ना। तो ब्यूटी पार्लर वाली सुंदरता नहीं बोल रहे हम। तो तन क्या स्वास्थ्य माना तंदुरुस्ती, नंबर टू तन की सुंदरता, और नंबर थ्री तन की सुडौलता, और सुडौलता का मतलब फिटनेस, और फिटनेस मतलब ठीक है ना, कि कोई ज्यादा मोटा नहीं और कोई ज्यादा दुबला नहीं, फिटनेस माना वही कहेंगे ना। तो तन के सुख के नाम पर इंसान को ये तीन चीजें चाहिए होती है। और आप देखेंगे हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कहे कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, अगर वो बिजी रहता भी है, चेक करने जाएगा तो पता चलेगा इन पांचों में ही बिजी है। देखो, अगर हम भी कहें कि हम ब्राह्मण बन गए हैं, सोल कॉन्शियस जीते हैं, क्या हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, देते हैं ना, इसका स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं, इसको सुंदर मेंटेन करते हैं, इसको फिटनेस, हाँ उसमें सफलता मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात है, समझ में आ रही ना बात, उसमें सफलता मिली या नहीं मिली वो अलग बात, लेकिन प्रयास तो जरूर करते, अपना समय अपनी सोच उसके पीछे लगाते तो है ना जरूर हम भी। तो ये तन का सुख है, और वो भी जो समय और सोच लगा रहे अपनी अपनी समझ के आधार से लगा रहा है हर कोई, हर एक की अपनी अपनी समझ है ना, तो हर एक अपनी अपनी समझ के आधार से इस तन के सुख को अनुभव करने के लिए लगा हुआ है। नंबर टू, मन का सुख। और मन का सुख क्या होता है? मन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी की अनुभूति हो, मन में उत्साह हो, मन में शक्ति हो, यही तो मन का सुख है। अगर ये नहीं होता है तो इसी में ही तो दुखी है, पता नहीं अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, कमजोर महसूस कर रहा हूँ, जीवन में कोई उमंग नहीं रह गया, उत्साह नहीं रह गया, उदासी छाई रहती, यही होता है ना। तो मन का सुख मतलब उमंग बना रहे, अंदर में खुशी रहे, शक्ति का एहसास हो, शांति का, सुख का, यह है मन का सुख। तो मन के सुख के लिए भी बात किसकी चल रही? नर और नारायण की चल रही। तो नर माना कलयुगी मनुष्य है ना, तो वो भी इस सुख के लिए जिसको जितनी समझ है, किसी को लगता है शायद मैं मंदिर नहीं जाता हूं इसलिए ऐसे हो रहा है, चलो मंदिर जाना शुरू कर दो। हाँ, हम सब भी ब्रह्मा कुमारी में कैसे पहुंचे होंगे कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी है ना, कि पता नहीं कुछ लगता है कुछ तो भी, जैसे मन की शक्ति के अंदर ये भी था कि जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, किस लिए जी रहे, ऐसे भी प्रश्न होते हैं कई बार कि जो अनसुलझे रहते हैं और लगते हैं कहीं से तो इन प्रश्नों का मुझे उत्तर मिलना चाहिए। तो कई हर एक जो ब्रह्मा कुमारी में आए होंगे, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड होगा, कोई सुख की तलाश में आए होंगे, कोई शांति की तलाश में आए होंगे, कोई अंदर से टूटे हुए थे तो शक्ति की तलाश में आएंगे, और कोई जीवन का अर्थ ही नहीं समझ रहा है कि हम जी किस लिए रहे हैं, तो क्या सच्चाई है जीवन के पीछे, कुछ इस तलाश में भी आया होगा। इसलिए आप हर ब्राह्मण की अगर कहानी सुनेंगे ना कि आप ज्ञान में कैसे आए, हर एक की एकदम डिफरेंट होती है ना। तो जैसे हम नर की बात करें तो हर एक को जो महसूस होता है, शायद ये नहीं करता हूं ना मैं, इसलिए शायद मेरे जीवन में सुख नहीं शांति नहीं, तो चलो ये करता हूँ, धूप दीप अगरबत्ती जलाना नहीं करता है तो वो शुरू कर देगा, मंदिर नहीं जाता हूँ तो वो कर देगा, प्रसाद नहीं चढ़ाता हूँ वो कर देगा, हाँ दान पुण्य नहीं करता हूँ वो कर दूंगा, शायद मैंने तीर्थ नहीं किए तीर्थ कर लेता हूँ, चार धाम नहीं किए चार धाम कर लेता हूँ, शहर में कोई स्वामी जी गुरु जी प्रवचन करने आते कभी जाता नहीं सुनने के लिए वो सुनना शुरू कर देगा, कभी उनके चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता हूँ तो वो शुरू कर देगा। मतलब जिसको जो लगता है शायद शायद मन बोलता जाता है, शायद मैं ये नहीं करता हूँ ना इसीलिए मेरे जीवन में सुख नहीं है, तो वो करता जाता है करता जाता है, वो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है, इसीलिए तो शायद शायद मन बोलता जाता है और अगली स्टेप उठाता जाता है, और अगली स्टेप उठाते उठाते सब यहां पहुंच गए है ना। तो मन का सुख चाहिए उसको। फिर तीसरा है धन का सुख, और धन का सुख माना मनुष्य होने के नाते सुख रोटी कपड़ा और मकान, मेरे जीवन की मौलिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, और इसकी पूर्ति होती रहे इसके लिए धन चाहिए। तो हम अपना समय और सोच धन कमाने में लगाते रहते हैं, और वो धन मेरी रोटी कपड़े मकान की पूर्ति होती रहे उसके लिए भी धन का एक सोर्स मेरा तैयार हो गया कि भी है, इस जैसे कोई दुकान लगा दी, कोई जॉब करे, व्हाटएवर, क्या वहां से पैसा आता है मेरा और मेरे रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होती रहती है। लेकिन धीरे से मन बोलेगा बस रोटी कपड़ा मकान, नहीं नहीं मैं तो समाज में रहता हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, तो समाज के अंदर मेरा रुतबा नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो धीरे से अंदर से हाँ होना चाहिए ना,
तो फिर वो होना चाहिए, तो फिर उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। तो बहुत पैसे जमा करने के लिए हम अपने समय और सोच लगाते रहते हैं। तो धन का सुख। फिर चौथा है जन का सुख। जन माना जनता, जनता माना लोग। कुछ लोग हमारे संबंध में होंगे और कुछ लोग हमारे संपर्क में होंगे। तो जन का सुख माना संबंध का सुख और संपर्क का सुख। तो संबंध का सुख माना परिवार का सुख और संपर्क का सुख माना समाज का सुख। तो हमें संबंधों का सुख क्या होता है कि संबंधों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तालमेल हो, प्यार हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, और इसीलिए हम लगे रहते हैं। ये सब पीछे हमको पहले अपना घर देखना है, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हमको अपने घर के सदस्यों के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसमें हमें समय लगाने दो। और फिर इतना ही नहीं, क्योंकि मैं चार दीवारों के अंदर रहने वाला प्राणी थोड़ी हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ, तो सिर्फ घर के परिवार का सुख थोड़ी चाहिए, मुझे तो समाज का भी सुख चाहिए। क्योंकि मुझे घर के चार दीवारों से निकलकर समाज के बीच में जाना है, और जब मैं समाज के बीच में जाऊं तो समाज मुझे सलाम तो करे, आंखों से आंख तो मिला सकूं, सिर तो ऊंचा करके चल सकूं। लेकिन वो तो तब होगा जब समाज के प्रति भी जिम्मेवारी अदा करूं। और इसलिए हम लगे हुए हैं, आज इधर बरसी है वहां जाना है, आज उधर बारसा है वहां जाना है, आज इधर सगाई का कार्यक्रम है वहां जाना है, आज उधर शादी का कार्यक्रम है वहां जाना है, आज इधर रामायण पाठ है वहां जाना है, आज उधर गीता पाठ है वहां जाना है। सामाजिक सुख, समाज में रहना है ना। और पांचवा सुख प्रकृति का सुख, कि हर इंसान की इच्छा होती मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, और वो घर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां का जलवायु मेरे हेल्थ को सूट करता हो। इतना ही नहीं, वो घर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी, पानी की व्यवस्था, मतलब प्रकाश, सूर्य सब भरपूर मात्रा में हो। सिर्फ सूर्य नहीं, ये लाइट की आपूर्ति ये भी 24 घंटा होती रहे तो बहुत अच्छा हो। इतना ही नहीं, टेलीफोन की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, नहीं? कहने का मतलब, विज्ञान ने जितने भी सुख सुविधा के साधन दिए हैं उन सब से मेरा घर भरा पूरा होना चाहिए। घर के बाहर बाग बगीचे होने चाहिए, द्वार पर गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए, सेवा में नौकर चाकर हाजिर होने चाहिए। यही होता है, ये है नर किसमें लगा हुआ है, समझ में आ गया। कलयुगी मनुष्य जिसको नर कहते हैं, इन पांच सुखों के पीछे मेहनत कर रहा है। और ये पांच सुख की कामना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इंसान है, बुद्धिजीवी इंसान है, जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब में बुद्धिजीवी कौन है, मनुष्य। तो बुद्धि मिली है तो जीवन को सुखों से भरपूर तो करना ही चाहिए ना। तो ये सुखों से जीवन को भरपूर करने की जो कामना है नर की, बहुत अच्छी है, वो गलत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, इतना सुंदर लक्ष्य, पांच सुखों से मेरा जीवन भरा पूरा हो, तो लक्ष्य भी सुंदर है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत चल रही है। इसीलिए तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके लक्ष्य प्राप्ति के करीब न जाकर वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन दूर हो रहा है। ऐसा ही है या नहीं? शरीर को जितना ठीक करने जा रहा है उतना और ही क्या हो रहा है, ज्यादा ही नाजुक हो रहा है। संबंधों को जितना बनाने जा रहे उतनी ही दीवारें खड़ी हो रही हैं। इन शॉर्ट समझ में आ गया ना कि लक्ष्य बहुत सुंदर है और उसको प्राप्ति के लिए मेहनत भी खूब कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य के करीब न जाकर लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। और नारायण इन पांचों सुखों से भरपूर जीवन जी रहा है। जो पहला सुख कहा, हाँ, लक्ष्मी नारायण की छवि को सामने लाओ अपने अपने मन के पटल पे और दोनों को देखो, देख लो उनकी तन की सुंदरता। कोई विश्व सुंदरी भी उनको पीछे कर सकती है? कर सकती है। देख लो उनका स्वास्थ्य, चेहरे पे गुलाबी पना है। क्या बताता है चेहरे पे गुलाबी पना? अच्छी सेहत। किसी का चेहरा पीला देखो, अरे भाई कुछ हो गया है डॉक्टर? क्या हुआ मेरे को? कुछ नहीं। अरे आपका चेहरा बोलता है? चेहरे से पता चलता है ना स्वास्थ्य। चेहरे में गुलाबी पना है और सुडौलता देख लो। जाना है किसी डाइटिशियन के पास? दुबला हूं या मोटा हूं? नहीं ना। तो तन का सुख 100% है और मन का सुख देखो उस छवि को फिर से, दिखता है वहां से कि आज वो हमारे जैसे जीवंत नहीं, सिर्फ हमारे पास तस्वीरें उनकी, क्योंकि सत्युग अभी है नहीं ना, सिर्फ तस्वीरें हैं, सिर्फ चित्र हैं, सिर्फ मूर्तियां हैं। लेकिन इतना सिर्फ तस्वीरों के पास भी जाता है एक दुखी व्यक्ति, पल भर के लिए तो दुख को भूल जाता है। अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति तस्वीरों के सामने जाता है, मूर्तियों के सामने, पल भर के लिए तो हौसले उसके बुलंद हो जाते हैं। कितना ही अशांत क्यों नहीं हो, पल भर के लिए तो मन शांत हो जाता है। तो जिनके चित्रों से ये वाइब्रेशन मिल रहे हो, वो जब सचमुच में होंगे तो क्या नहीं वाइब्रेट करते होंगे सोचो। तो क्लियर है कि मन का सुख भी 100% है। चेहरे में क्या है? हर्षित मुखता। हर्षित मुखता क्या है? अंदर सभी जो चाहिए होता है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, वो सबका रिफ्लेक्शन ही तो हर्षित मुक्ता है। तो हर्षित मुक्ता झलक रही, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अंदर में दुख है और कभी हम छुपाने के लिए कोशिश करें, सामने वाला समझ जाता है। अंदर में बहुत खुशी है लेकिन सामने वाले के पास थोड़ी नौटंकी करना है तो हम थोड़ा दिखाते तो भी पता चल जाता है। होता है ना, दुनिया में यही चल रहा है। मतलब उसका चेहरा पता चल जाता है, चेहरे से पता चल रहा है कि वो नौटंकी कर रहा है ताकि मुझे उससे कुछ मिले, है ना। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो लक्ष्मी नारायण के चित्रों को देखो, मूर्तियों को देखो, उनकी हर्षित मुक्ता से व्यक्ति दुख भूल जाता है, अपना टूटा हुआ हृदय उसमें हौसले आ जाते हैं। तो सचमुच जब जीवंत रहे होंगे तो 100% मन का सुख। अभी भी ये तस्वीरें जो कलयुगी मनुष्यों ने बनाई है उसमें इतनी सुंदरता दिख रही, जो शायद दादी गुलजार का शेयर कर रही थी ना शीलो दीदी, कि देखा तो कृष्ण ही था पर अभी वाले कृष्ण से उसकी सुंदरता टू मच ज्यादा थी कि उसको डिफरेंस महसूस हो रहा था। तो सोचो आज कलयुगी मनुष्यों ने जो चित्र बनाया वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो सचमुच में जब होंगे वो तो कितने सुंदर रहे होंगे, कितने हेल्दी रहे होंगे, कितनी फिटनेस रही होगी उनमें। और फिर तीसरा है धन का सुख। तो धन का सुख भी देख लो ध्यान से, क्या तो आभूषण है, क्या तो वस्त्र पहने हैं, क्या तो रत्न जड़ित ताज पहना है। ये बिना धन के तो नहीं हो सकता है ना। तो धन भी अपार है, क्लियर पता चलता है। चौथा जन का सुख, कि जहां बताया संबंध भी और संपर्क भी, जिसको कहा परिवार भी और समाज भी। परिवार का सुख किसको कहते हैं, कैसे पता चलता है इस तस्वीर को देख के? हमेशा युगल झांकी के रूप में दिखाया है, अलग नहीं दिखाया है। और अलग दिखाया है तो फिर चार हाथ वाला दिखाया है, अर्थात ये बताया कि दोनों आत्माएं साथ साथ हैं। और दोनों आत्माएं साथ साथ दिखाया मतलब दिल मिले हो तब साथ साथ होते हैं। अगर दिल मिले नहीं हो तो साथ होते नहीं हो सकते हैं। ये दिखा रहा है कि दिल आपस में मिले हैं, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन है, समर्पण भाव है, सहयोग की भावना है। और अगर घर के मुखिया के अंदर ये लक्षण होंगे तो उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे के अंदर कौन से गुण होंगे? वही होंगे। आज माँ बाप लड़ते हैं और बच्चे को कहते बेटा ऐसे लड़ते नहीं है, वो कहता पापा रखो मैं भी देखता हूँ आप मम्मी से कैसे करते हो। अगर मम्मी कहेंगे तो आ रखो रखो मैं देखता हूँ आप पापा से कैसे करती हो। बच्चों को शब्दों से हम क्या सिखा रहे वो नहीं सीखते हैं, हम क्या रेडिएट कर रहे हैं, क्या वाइब्रेट कर रहे हैं व्यवहार के द्वारा, वो वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण जिनके दिल मिले हुए हैं, आज तो क्या होता है आई लव यू और कल आई हेट यू, लेकिन उनकी युगल झांकी हमेशा दिखाई है, सारी जीवन भर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तालमेल रखते हुए जीवन में आगे बढ़े हैं। तो उस घर में जन्म लेने वाली संतान भी वही होगी। तो परिवार का सुख हुआ या नहीं हुआ? उनके पास हुआ ना परिवार का सुख। फिर बात आती है समाज के सुख की। आज वो है नहीं, सिर्फ चित्र है, लेकिन उन चित्रों को उन मूर्तियों को आलीशान मंदिरों में स्थान मिल रहा है। और क्या तो सौगाते भेंटे चढ़ाई जा रही है, और क्या तो यूं दंडवत प्रणाम किया जा रहा है। आज हमारे दिल में किसी के प्रति रिगार्ड नहीं, प्यार नहीं, सम्मान नहीं, उसको हम इतनी आलिशान जगह देंगे बैठने के लिए? उसको इतनी जाके भेंटे देंगे, इतना ऐसे झुक के प्रणाम करेंगे? ये तो तब होता है जब किसी के लिए हृदय में प्यार है, सम्मान है। तो जिनकी मूर्तियों को इतना सब मिल रहा है, तो जब वो सचमुच में रहे होंगे, समाज ने कितना रिगार्ड दिया होगा, कितना रिस्पेक्ट दिया होगा, कि जिसको कहा कि लक्ष्मी नारायण विश्व राजा और विश्व रानी, कि जहां पर सारी प्रजा उसको मात पिता के रूप में स्वीकार कर रही है, तो समाज के सुख से भरपूर हुए या नहीं हुए? और पांचवा सुख प्रकृति का सुख, कि मेरा घर ऐसी जगह पे हो, एक तो अपना हो, फिर ऐसी जगह पर हो जहां की जलवायु मुझे सूट करती हो। कहां के रहने वाले? वैकुंठ के, स्वर्ग के, जहां प्रकृति। बाबा ने क्या कहा है? प्रकृति दासी है, सतो प्रधान है। एक एक की क्या महिमा है स्वर्ग की, एक एक के बड़े बड़े महल, हीरों से रत्नों से जड़े हुए सोने के महल, चांदियों के महल, और हीरे रत्नों से जड़े हुए और बड़े बड़े, और एक महल के बाद दूसरा महल तो बहुत दूर। तो घर के अंदर सूर्य प्रकाश अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? आज तो बहुमंजिला मकानों में रहते हैं, सटे सटे रहते हैं, तो कई बार तो पता ही नहीं चलता है सूरज कब आता है, रात कब होती है, क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट के अंदर जी रहे होते हैं, हवा भी बाहर की नहीं मिलती। लेकिन वहां तो बड़े बड़े महल और बहुत दूरी होगी दूसरे महल में, और फिर धरती पर हरियाली का गलीचा बिछा हुआ है, और महलों के बाहर ही मीठे पानी की नदियां, तो पानी तो स्वच्छ आएगा, 24 घंटा मिलेगा ना। और फिर इतना ही नहीं, पुष्पक विमान खड़े हैं बाहर, वो भी अलग अलग टाइप के, सिंगल जाना है तो सिंगल, फैमिली वाले तो फैमिली वाला, है ना। हवा बहुत अच्छी बह रही होगी, पंछी कलरव कर रहे होंगे, बाग बगीचे फलों और फूलों से भरे हुए रहेंगे, जिसके लिए कहा कि शेर और बकरी भी, गाय और बकरी भी या शेर बकरी भी एक साथ होंगे, दूध घी की नदियां बहेंगी। तो प्रकृति की रात को बाबा कहते बारिश आके चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा ही बारह ही मास वसंत ऋतु होगी। तो प्रकृति का सुख है या नहीं है, तो हम क्या देख रहे थे, नर और नारायण में अंतर क्या है। तो नर वो है जो इन्हीं पांच सुखों के लिए सारी जिंदगी मेहनत कर रहा है, और नारायण वो है जो ये पांच सुख उसको जिंदगी की शुरुआत से मिले हुए हैं। लेकिन वो जिंदगी की शुरुआत से जो ये पांच सुख मिले, तो क्या कारण था, आत्मा चंद्रमा की भांति 16 कला संपूर्ण चमक रही थी, पवित्र थी। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते गए, पहले तो परमधाम से आए, तो सत्युग में जो पहला शरीर लिया, आत्मा अपनी सत्व प्रधान स्टेज में, चाहे हम कोई भी पोस्ट में होंगे वहां पे, सत्युग में भी तो वैरायटी तो होगी ना, राजधानी है ना, पर हर आत्मा क्या होगी, सत्व प्रधान होगी। लेकिन समय के साथ साथ, जैसे दिए को देखा, प्रकाश क्या हो रहा है, कम, आत्मा का प्रकाश भी क्या होगा, कम होगा। तो त्रेता में महसूस होगा 14 कला, और फिर द्वापर में आते आते कला नाम ही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि धुआं ना शुरू हो जाए। दिए की तीसरी स्टेज, ये भी तो दिया, देखो मंदिरों में कलश रखते हैं ना जब पूजा करते हैं, गुजरातियों में तो देवियों की बहुत पूजा चलती है ना, जिस देवियों के सामने कलश भी रखे जाते हैं। दो प्रकार के कलश होते हैं, एक कलश होता है जिसके ऊपर दिया होता है, और एक कलश होता है जिसके ऊपर नारियल होता है। तो दिया और कलश का मतलब क्या, ये पूरा शरीर यहां तक क्या है, कलश है, ये दिया और उसमें ये ज्योत जल रही है, ये पूरा शरीर कलश, ये नारियल, हाँ ये नारियल दिख रहा है, और उसको फोड़ोगे तो गिरी मिलेगी। भक्ति मार्ग में भी जो बनाया ना, बहुत उसके पीछे ना रहस्य छिपा हुआ है, पर कालांतर में क्या हो गया, उन रहस्यों को हम भूल गए, सिर्फ स्थूल बातें पकड़ के रखी कि दिया जलाना चाहिए। वास्तव में वो ये था कि जब जब वो दिया जलाओगे, तब तब आपको स्मृति आ जाए, उधर देखते हाँ, ये शरीर कलश है एक, ये उसमें दिया और उसमें ये ज्योत जल रही है, करना वो था, लेकिन हम वो सब भूल गए, सिर्फ दिया जलाना है और नारियल फोड़ना है ना। तो क्या बता रहे थे हम, कि दो युगों के बाद उस दिए से धुआं निकला। अब हुआ क्या, लोगों के मन में कई बार प्रश्न होता है कि हमने वहां पर कोई विकर्म तो किए ही नहीं, नहीं किए ना, बाबा कहते ना वहां पे हमारे अकर्म होते हैं, फिर ये ऐसे हमारे जीवन में क्यों हो गया, उसका कारण समझना है, और उसी कारण को पकड़ेंगे तो फिर नर से नारायण बनने के लिए विधि क्या रहेगी वो समझ में आएगी, और उसमें आस्था बैठेगी, और जब आस्था बैठेगी हम उसको करने लग जाएंगे, और तब सचमुच में हम नर से नारायण बनेंगे, तब जाके सचमुच में हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा, नहीं तो चल गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब हम आए तो आत्मा यहां बैठी, 100% सोल कॉन्शियस थी, अर्थात सोल कॉन्शियस जैसे आज हम अभ्यास करें वो अभ्यास नहीं कर रही थी, वो नेचुरल थी। कैसे नेचुरल थी, बचपन में लट्टू खेला सभी ने, वो भौरा, कोई लट्टू बोलता है कोई भौरा बोलता है, खेला होगा ना सभी ने, भावर बोलते हैं हाँ। तो रस्सी पहले तो उसको हाथ में उठाना, फिर रस्सी भी पकड़ना, और फिर ऐसे पहले तो वो आना चाहिए। तो जब शुरू शुरू में कोई हमारे सामने खेलता है, फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम उठाते हैं, फिर शुरू शुरू में हमको टाइम लगता है ना, लगता है हमको भी टाइम, फिर हम भी बांध के जैसा तैसा आया, बांधा और चलाया, फिर देखो उसके जैसे नहीं चल रहा है मेरा, फिर और कोशिश की और कोशिश की। तो ये प्रयास करते करते एक दिन आता है हमारा भी हाथ सध जाता है और हम भी बिल्कुल वैसा ही लट्टू चलाते हैं जैसा एक एक्सपर्ट चलाता है, कि वो चलाया और वो इतना तेजी से घूम रहा है कि उस तेजी के कारण पता ही नहीं चल रहा है, जैसे कि वो एक जगह खड़ा है ऐसा महसूस होता है कई बार, लेकिन फिर जैसे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है तब पता चलता है, फिर वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो अभी जो संगम पे हम क्या कर रहे हैं, सोल कॉन्शियस बनने का लट्टू चला रहे हैं, समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं हम, जो आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, ये जैसे कि लट्टू चलाना सीख रहे थे बचपन में, ऐसे ये चल रहा है। लेकिन सीखते 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 इसमें संपूर्णता आएगी और फिर क्या होगा, लट्टू चलाए और मस्त तेजी से चल रहा है, ये होगा नेचुरल सोल कॉन्शियस। वहां पे हम अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास यहां वाला जो 100% तक पहुंचा, हमारा एक्सपर्टीज आ गई उसमें, हमको माहिरता आ गई, हम प्रवीण बन गए उसमें, उस घड़ी तो फिर हम देवता ही चोले में चले जाएंगे। तो वो अपने आप सोल कॉन्शियस हमारी चलती रहेगी, लेकिन जैसे का लट्टू में भी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, वो उसकी स्पीड कम होगी ना, तो ऐसे धीरे धीरे हमारा भी क्या होगा, कम होगा। तो वो सोल कॉन्शियस जो सत्युग में हमारी 100% होगी, वो द्वापर के बिगिनिंग या त्रेता के एंड में आके जीरो पे चली जाएंगी। लेकिन अब कहा कि बॉडी कॉन्शियस का धुआं आया, ये कैसे आ गया, कि हम भले सोल कॉन्शियस में थे लेकिन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य दुनिया की इंफॉर्मेशन अंदर ही तो जाती है ना, कहां जाती है, जैसे आज मेरे सामने भोजन की थाली, अभी भोजन के लिए जाएंगे, भोजन तो इधर रखा है लेकिन वहां से उठा उठा के और फिर यहां से अंदर, एक स्टोरेज प्लेस है ना अंदर, कि जहां वो स्टोर होता है, समझ में आ रहा है, कि जिसको हम आमाशय कहते हैं, कि जहां पर वो जाके एकत्रित होगा और फिर वहां पे और उसके ऊपर प्रोसेस चलेगी, और उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद जो उसमें से रस आदि निकलेगा और वो जाके पूरे शरीर को सप्लाई होगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही सिर्फ यहां से नहीं, यहां से भी तो ग्रहण हो रहा है, यहां से भी तो ग्रहण हो रहा है, यहां से भी तो ग्रहण हो रहा है, यहां से भी तो ग्रहण हो रहा है ना, त्वचा से स्पर्श अंदर खींच रहे, यहां से आवाज अंदर ले रहे हैं, यहां से दृश्य अंदर ले रहे हैं, यहां से खुशबू कहो जो भी वो ले रहे हैं, सब अंदर जा रहा है ना, ये भी तो कहीं स्टोरेज प्लेस होगा ना, कि जहां जाता होगा, जाता होगा या नहीं जाता होगा, भले वो सूक्ष्म चीजें होने के कारण हम समझ नहीं पाते, पर होगा तो सही ना, वो कौन सा स्टोरेज प्लेस है उसको समझ लेते हैं हम। मन और चित्त, दो शब्द सुने हैं आपने, मन और चित्त में अंतर क्या है बता सकता है कोई, चित्र जो है, सिक्का देखा है कभी और कभी खेल खेल में खेला होगा, चित मेरी पट मेरी, उछाला होगा ना कभी, तो क्या बोलते हैं, चित और पट बोलते हैं ना, तो वो चित और पट एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्का एक ही है लेकिन इस साइड एक साइड चित और एक साइड पट। चित किस साइड को बोलते हैं, जिस साइड में फेस अंकित रहता है, मतलब चित्र, जो बहन जी ने कहा चित्र माना जहां पे, चित्त माना जहां चित्र रहता है और मन माना पट पट, वैसे भी किसको बोलते हैं, स्क्रीन को बोलते हैं नहीं, श्याम पट, स्कूल में जो लिखते हैं उसको श्याम पट बोलते हैं ना, पट माना स्क्रीन। तो मन है स्क्रीन और चित्त है चित्र माना, जहां हर चीज हम जो आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, हम ये सब कहां जा रहा है, चित्त में जा रहा है। जैसे कंप्यूटर के अंदर मुझे कुछ भी डालना है तो पहले कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग करते स्क्रीन पे आता है, और अगर सेव बटन दबाया, एंटर बटन दबाया, उसके बाद कहां जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाएगा ना अंदर। अगर सेव नहीं दबाया तो वो हार्ड डिस्क में जाता है, नहीं जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो फिर हम कहते हैं ये कैसे होता है, देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो। देख तो लिया अभी कैसे नहीं देखूं, सुन तो लिया अभी कैसे नहीं सुनूं। अभी स्क्रीन पे है वो, सेव बटन मत दबाओ, समझ में आया, सेव का बटन मत दबाओ, अंदर हार्ड डिस्क में नहीं रखो। तो जब हार्ड डिस्क में रखा ही नहीं तो रिट्रीव वो फाइल को फिर खोल भी नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य, इंद्रियों के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन हो रही थी वो अंदर चित्त में जमा होती जा रही थी, और वो चित्त क्या चीज है थोड़ा उसको भी समझ ले। और एक तो स्टोरेज प्लेस तो है ही, और क्या है कि आत्मा जो है, आज बाबा क्या कहते हैं कि मैं पतितों को पावन बनाने आऊं, यही कहता है। और फिर बाबा को अगर बच्चे आते हैं दुखी है, अशांत है, हम भी कोर्स वाले आते तो क्या कहते हैं, नहीं भाई साहब आप हो ही शांत स्वरूप, यही ज्ञान देते ना, क्योंकि बाबा ने हमको बोला बच्चे तुम तो हो ही शांत स्वरूप, बच्चे तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप, तुम तो हो ही पवित्र स्वरूप, तो फिर पतित पावन क्या करने आया है। जब मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही पवित्र, और फिर बाबा बोलते मैं आया हूं पतितों को पावन करने, तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। बल्ब देख रहे हैं, बल्ब में एक अंदर में एक फिलामेंट होता है और उसके चारों तरफ कांच होता है ना कांच, और वो पारदर्शी होता है। तो जब बल्ब जलता है तो कांच जलता है या वो फिलामेंट जलता है, फिलामेंट जलता है, उसका प्रकाश फैलता है, और चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो उस कांच से निकलकर बाहर आता है और फिर हम उस प्रकाश का अनुभव करते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश तो वही दे रही है, लेकिन बल्ब की तरफ उसके चारों तरफ ये चित्त जो है उसको सराउंड किए हुए है, और वो चित्त एकदम पारदर्शी। और इसलिए आत्मा की ज्योति, आत्मा सिर्फ ज्योत नहीं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो वो वाइब्रेशन भी उस चित्त रूपी कांच से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते रहे वो भी तो चित्त के ऊपर ही जमा हुए, और इसलिए चित्त की ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे काल चक्र में हम आगे बढ़ते जाते हैं, चित्त की ट्रांसपेरेंसी कम 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 होती जाती है। जो दिए का उदाहरण दिया कि फिर तो धुआं भी निकलता है, और चौथी स्टेज में तो दिया क्या होता है, नाम मात्र के लिए प्रकाश, सारा धुआं ही धुआं। तो चित्त के ऊपर इतनी परतें चढ़ जाती है कि अंदर तो आत्मा पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप अब भी है, लेकिन जिसको उस चित्त से जहां से गुजर के बाहर आना है वो चित्त मैला पड़ा है। और मैला कब से आरंभ हुआ, उसकी पहले तो ट्रांसपेरेंसी कम हुई, सत्युग और त्रेता में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी खत्म, धीरे धीरे कम हुई, लेकिन द्वापर से तो ट्रांसपेरेंसी भी कम हो रही है और मैलापन भी बॉडी कॉन्शियसनेस का चढ़ते जा रहा है। और इसलिए जब तक उस चित्त के ऊपर चढ़ी हुई परतों को हम साफ नहीं करेंगे, आत्मा का ज्योति स्वरूप, आत्मा जो है ही प्रेम स्वरूप, आत्मा जो है ही शांत स्वरूप, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। और इसीलिए तब तक हम नारायण नहीं बन सकते जब तक न सिर्फ हम मन से अपने को समझे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन वाचा में भी वो होना चाहिए और कर्मणा में भी वो होना चाहिए। क्योंकि चित्त में जो अंदर मैल की परतें गई है, वाचा कर्मणा के द्वारा भी तो गई है ना। क्योंकि कर्म हम क्या कहते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है, उसके अनुसार फिर जो निर्णय हुआ हम कर्म करते हैं और हर कर्म की छाप संस्कार के रूप में आत्मा पर पड़ती है, यही कहते हैं ना। तो मन से जो सोच रहे हैं, बुद्धि से जो निर्णय कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे हैं, ये सब कर्म की लिस्ट में आया ना, और इसकी छाप उस चित्त पर पड़ते जा रही है। तो सिर्फ मैं सोचूं कि मैं इतना ही करूं कि अंदर मैं सिर्फ ये अभ्यास करूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूं, उस लेवल पे थोड़ी बहुत उस समय अनुभूति होगी। बाद में तो हमें कर्मणा में आना है ना, वाचा में आना है ना। तो वो अगर वाचा में भी अटेंशन रहे, तभी तो हम कहते हैं ओम शांति, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। लेकिन शांति अनुभव क्यों नहीं हो रही, तो कहा अ उ म आचरण उच्चारण और मन का विचार, कि वो हमारे आचरण में भी हो, हमारे मन के विचार में भी हो, और उच्चारण माना हमारे वाणी में भी हो।
ओम शांति। हाँ, अंदर से तो बोल अभ्यास करती हूँ मैं आत्मा ओम शांति, और वाणी में क्या लाया, ये कोई ये शांति था, शांति तो नहीं है ना, फिर कैसे अनुभव होगी शांति जीवन में। हाँ, नहीं हो सकता है ना, तीनों लेवल पर हो। और इसीलिए आपने जैसे देखा होगा एक एक क्लासेस, कल भी कितनी सुंदर क्लास, कि हमें सहयोग की संस्कृति, शुक्रिया की संस्कृति, सॉरी की संस्कृति, सिर्फ मन तक नहीं, प्रैक्टिकल व्यवहार में उसको उतारना होगा, तब जाके ये चित्त के ऊपर जो परते चढ़ी है वो उतरेगी, और उतरते ही ट्रांसपेरेंट बनते ही अंदर तो आत्मा प्रकाशित है, और उसका प्रकाश हम भी अनुभव करेंगे। हम उस फ्रिक्वेंसी पे होंगे तो परमात्मा से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच खाएगी और हमारा योग लगा ही रहेगा। अभी तो हम बैठते हैं योग करने, थोड़ी देर लगता है कनेक्ट हुए, थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हुए, ऐसा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि बाहर इतनी पड़ते हैं ना, तो बाहर की परतों को निकाल देना है। और वो परतें क्यों आई, ट्रांसपेरेंसी क्यों खत्म हुई, बॉडी में हम आए आत्मा। और इसीलिए बाबा की पहली शिक्षा, बच्चे देही अभिमानी बनो, जब देही अभिमानी बनेंगे तो ही पारस बुद्धि बनेंगे, पारस बुद्धि बनेंगे तो ही नर से नारायण बनेंगे। तो पारस बुद्धि बनना है, ज्ञान को सिर्फ सुन के नहीं, जीवन में उतार के, तब जाके हम सचमुच नर से नारायण, नर ऐसी करनी करें जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करें जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो ये करनी जो है तीनों लेवल पे है, ये मनसा लेवल पर भी, वाचा लेवल पर भी, और कर्मणा लेवल पर भी, तब जाके सचमुच हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएंगे। तो
21 जन्मों से जो एक जन्म यहाँ का है, यहाँ पर भी दैवी संस्कृति की झलक आपस में एक दूसरे को मिलती रहेगी। जो लोग कहेंगे ये तो सचमुच मनुष्य के रूप में कोई देवता दिखता है ना, तो तब हमारा सार्थक हो जाएगा ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ओम शांति।